Iulia di Sardes udì, Iulia di Sardes udì, guru me deshi, shuddhātm me nirat nitya hito udeshi, विपाप भीष्म तुम्हें जल सयामे उन्होंने सतत केवल ज्ञान पाने उन्होंने सतत के बोले भगवान महावीर स्वामी के दस लक्षण महापर्व की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमा भाव धारण करने की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। हम सब ने अपने जीवन में कठोरता अपना करके अपने को मुश्किल में डाला है, इसलिए अब हम कठोरता छोड़ करके, अहंकार छोड़ करके दयुता और कोमलता का आचरण सीखने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। हमने छल कपट और मायाचारी करके देख लिया, लेकिन हमें उससे कुछ लाभ होता जान नहीं पड़ा, इसलिए अब हम छल कपट और मायाचारी को छोड़ करके सरलतापूर्वक अपना जीवन जीने के लिए संकल्पित होते हैं। हमने लोभ लालच से जितना कुछ भी अपने जीवन में संचित करके रखा, उससे भी हमें जो वास्तविक सुख था वो नहीं मिला, इसलिए अब उस लोभ लालच को कम करके संतोष पूर्वक अपना धर्म ध्यान करते हुए जीवन जीने की समझ हमारे भीतर उत्पन्न हो गई है। सच्चाई यही है, अगर ये सारी चीजें हमारे जीवन में समझ में आ जाए, अपने आत्मस्वरूप की अगर हमें थोड़ी सी भी समझ उत्पन्न हो जाए, तो वास्तव में हमने सत्य को जान लिया। सत्य को पाना, सच्चा होना और सच बोलना, ये तीनों चीजें हमें समझ लेनी चाहिए। सच्चाई तो भैया सिर्फ इतनी ही है कि आत्मा समस्त परद्रव्यों से भिन्न है, और मैं आज तक परद्रव्यों में अपनापन मान करके और अपने स्वभाव को भूल गया हूं, ये मेरा झूठा आचरण मेरे संसार में भ्रमण का कारण है, ये मेरी अज्ञानता ही मेरे संसार में दुखों का कारण है। ये बात अगर हमें स्पष्ट समझ में आवे, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का ऐसा सच्चाई के बारे में और हमें अभ्यास करना चाहिए, और उस सच्चाई को पाने के लिए क्या करना, सच्चे होने के लिए क्या करना, सच बोलने की प्रक्रिया क्या होगी। आचार्य भगवंतों ने सबके बारे में अलग अलग ढंग से और विचार किया है। सच्चाई को पाने का मतलब यह है कि हम अपने आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करें। हम जितना जितना वितरागता की तरफ बढ़ते हैं, मानिएगा हम उतना अपने जीवन में सच को पा लेते हैं, या जितना जितना हम अपना राग द्वेष घटाते चले जाते हैं, मानिएगा उतना हम सच को पा लेते हैं। सच्चाई को पाना यानी प्राणी मात्र में आप आत्मा के स्वभाव को स्वयं अपने जीवन में और प्राणी मात्र के जीवन में देख पाना, और ये जिसने एक बार इस चीज का दर्शन कर लिया, यानी अपने आत्म स्वरूप को जिसने पहचान लिया, फिर उसको कुछ और पाने की ललक नहीं रहती। फिर मानो कि उसने सब कुछ पा लिया, कितना शांत और निर्मल जीवन हो जाता है। वही जीवन कहना चाहिए सच को पा लेने वाले का जीवन है। इसके बारे में एक छोटी सी घटना आती है, वो मैं हमेशा सुनाया करता पर है बहुत कठिन। ऐसा सच को पाना बहुत कठिन है। वो तो हमारे अपने जीवन में जैसे जैसे हम अपने स्वभाव को प्राप्त करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम सच को पा लेंगे। इस सच को पाने के लिए हमें पहले अपने आप को सच्चा बनाना पड़ेगा और सच बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें अपन बाद में समझेंगे। वो छोटी सी घटना से अपने को मालूम पड़ जाए कि सच को जो पा लेता है उसका क्या आचरण होता है। हम ताकि अपने जीवन में झांक करके देख सकें कि क्या सचमुच हमने सच्चाई को प्राप्त कर लिया है, क्या सच्चाई हमारे जीवन में आ गई है, या सच का हमें ज्ञान हो गया है। सच का ज्ञान होने पर हमारे आचरण में परिवर्तन अपने आप आना शुरू हो जाता, दिखना शुरू हो जाता। एक पिता के चार बेटे थे और पिता ये चाहता था कि उसके पुत्र सच्चाई को प्राप्त कर ले। आज के समय में ऐसा बहुत मुश्किल है। कोई पिता अपने पुत्र से ये चाहे कि उसका पुत्र सच्चाई को प्राप्त कर ले, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ये चाहेंगे कि अच्छा मकान बनवा ले, अच्छी धन संपदा वाला हो जाए, अच्छी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, अच्छी नौकरी। इससे ज्यादा और क्या चाहेंगे, क्या अपेक्षा रखेंगे आप पुत्र से? कोई अपने पुत्र से ये अपेक्षा रखे कि पूरी जिंदगी मैं जिस सच को नहीं पा पाया, मेरा पुत्र उस सच्चाई को पाले? अगर थोड़ा बहुत भी सच्चाई को पाने की तरफ कदम बढ़ाता है तो हम उसको वापस लौटा लेते कि क्या कर रहे हो, लीक से हट करके चल रहे हो, ऐसे नहीं चला जाता, मैं जैसा बताता हूं वैसे चलो। और हम फिर उसे उसी झूठ में, उसी असत्य में डाल देते हैं जिसका कि हम पूरे जीवन अनुभव करते रहे, जिसमें हमने कभी सुख नहीं पाया, उसी चीज में हम उसके कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। उसे सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए कोई उपाय अगर करने लगे तो उस तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं देते। पीठ तो थपथपाते नहीं है, प्रेरणा तक नहीं देते। बढ़ने लगे तो और डिकरेज करेंगे उसको, और पीछे हटाएंगे कि अरे नहीं। उस पिता के मन में था कि चारों पुत्रों में से कोई एक तो प्राप्त कर ले सच्चाई को, समझ ले, जान ले। उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा कि मेरे जीते जी तुम में से कोई सच्चाई को पाले तो मैं शांतिपूर्वक मरण को प्राप्त कर सकूंगा, वरना मेरा जीवन अकारक चला जाएगा। मेरे जीवन में एक ही कर्तव्य और शेष रहा है कि मैं स्वयं सच को नहीं पा सका तो कम से कम अपने पुत्रों को सच को प्राप्ति के लिए और प्रेरित करो। जाओ तुम सब और सच को पाकर के लौटना। पिता इंतजार करता रहा। उस घटना में लिखा है कि 12 बरस व्यतीत हो गए, अब लौटेंगे। उन चारों भाइयों ने भी एक पेड़ के नीचे खड़े होकर संकल्प लिया कि अलग अलग चारों दिशाओं में जाकर के सच को पाकर के इसी वृक्ष के नीचे चारों लौटेंगे और फिर पिता के पास एक साथ चलेंगे। और उन्होंने भी सीमा तय की थी 12 वर्ष की, चाहे मिले या ना मिले 12 वर्ष में लौट करके आएंगे। और सचमुच वे चारों लौटे। पिता तो इंतजार ही कर रहा था। आते ही साथ अशक्त हो चुके थे पिता, फिर भी उठ करके बैठ गए। बड़े पुत्र की तरफ दृष्टि उठा करके देखा तो बड़े वाले पुत्र ने वेद की ऋचाएं कहना शुरू कर दी। सत्य के बारे में, वेदों में जो लिखा हुआ है सच्चाई के बारे में वो पढ़ना शुरू कर। पिता ने सुना नहीं सुना, और जब उसके सत्य के बारे में कथन पूरा हो गया तो दूसरे वाले पुत्र की तरफ आंख उठा करके देखा तो उसने उपनिषद के श्लोक दोहराना शुरू कर दिए जो सच के बारे में लिखे हुए थे। पिता और अधिक निराश हो गया। तीसरे वाले पुत्र की तरफ देख करके उसने इशारा किया कि तुमने सच को पाया, तो उसने विभिन्न धर्म ग्रंथों में जो सारभूत बातें थीं वो सुनाना शुरू कर दी। पिता तो इतनी देर में निडाल हो करके और पुनः बैठ गए और निराश भी हो गए कि शायद मैंने सोचा था कि ये सच को पाकर के लौटेंगे, लेकिन ये सच के बारे में सिर्फ खबर दे रहे हैं, इन्होंने सच को पाया नहीं। सच के बारे में खबर देना बिल्कुल अलग बात है, और स्वयं सच को प्राप्त कर लेना जिससे कि जीवन बदल जावे ये बिल्कुल अलग है। सच्चाई के बारे में हम लोग कितनी बातें नहीं जानते हैं, बहुत बातें जानते हैं, लेकिन जिन्होंने अनुभूति की है सच की उनकी बातों को सिर्फ हम जानते जानते हैं, दोहरा देते हैं उनको, मस्तिष्क तक वे सीमित रहती हैं, हमारे हृदय में वो सच्चाई कहाँ प्रवेश कर पाती है। पिता यही चाहता था कि ये सच को जान करके और अपने जीवन में उसे प्राप्त कर लें, अर्थात इनका जीवन भी वैसा ही हो जाए। और वे निराश होकर के लेटने ही वाले थे, इतने में उन्हें ध्यान आया कि अभी एक पुत्र और शेष है, छोटा वाला, उसकी तरफ दृष्टि उठाई तो वो पुत्र कुछ नहीं बोला और सिर्फ माथा झुका करके पिता के पैर छू लिए। आंखों में अत्यंत चमक है, चेहरे पर मुस्कान है और अत्यंत शांत मुद्रा है। अब तो जो निडाल होते हुए पिता थे, जो निराश हो गए थे, उठ करके एकदम कहां से शक्ति आ गई और खड़े होकर के जिस बेटे ने पैर छुए थे उसी के पैर छूने के लिए झुकने लगे। पिता ने उन जैसे ही पैर छूने के लिए बढ़े, पुत्र ने उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों के आंसू बह रहे हैं, लेकिन पिता जानता है कि अब वो आसानी से मरण को प्राप्त होगा। जीवन के अंत में उसे इस बात की खुशी है कि उसके पुत्र ने सच्चाई को प्राप्त कर लिया। बताइए क्या समझ में आया, क्या पाया उस चौथे वाले पुत्र ने? इतना ही कि पिता के पैर छू लिए, दो आंसू बहा दिए, चेहरे पर चमक आ गई, आंखों में चमक आ गई, शांत मुद्रा है। यही सच्चाई को पा लेना है, यही सच्चाई को पा लेना है कि जीवन में सुख दुख के बीच, हर्ष विषाद के बीच समता आ गई है। अब मुख से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, अब तो पूरे जीवन से सच्चाई प्रकट होने लगी है। सच को पा लेना इसका मायना यही है कि अपने जीवन को उस वीतराग स्वरूप मय कर लेना, यही सच्चाई को पा लेना है। हर्ष विषाद के बीच समता भाव रख लेना, यही सच्चाई को पा लेना, ये अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करें? इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर सच होने का अभ्यास करें और सच बोलने का अभ्यास करें। तब आचार्य भगवंतों ने सच होने और सच बोलने के लिए कुछ बातें कह दी कि सबसे पहले अगर सच्चाई को पाना चाहते हो तो मन, वचन और काय, इन तीनों की क्रियाओं को मां चिट्ठा मां जंपा किम विजेन कोई थिरो, तब कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, सिर्फ जो है स्थिर हो जाओ। ये मन, वचन, काय तीनों की गुप्ती, वचन गुप्ती, बोलने का ही मन में कोई विचार ही नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया से शुरू करना अगर सच को पाना चाहते हो। सच को वे ही पाते हैं जो मन वचन गाय तीनों की गुप्ती अर्थात तीनों की स्थिरता को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये उपाय तो जरा कठिन जान पड़ता है। तो आचार्य भगवान तो सबका कल्याण करना चाहते हैं, वे कहते हैं कि चलो कम से कम झूठा आचरण करने का त्याग कर दो और झूठ बोलने का त्याग कर दो। झूठ बोलने और झूठा आचरण करने का त्याग करने का नाम सत महाव्रत धारण कर लेना है। तो इस तरह सत महाव्रत हो गया। पर संतावय वैनम मोतून सपर हित सहितम वैनम, दूसरे को संताप देने वाले वचनों का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के वचन बोलना, अगर आप पूरी तरह से झूठ का त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम सत्य धर्म को अंगीकार कर लो कि दूसरे को संतापित करने वाले वचन नहीं बोलूंगा पर हितकारी वचन ही बोलूंगा। और इतना ही नहीं, अगर सच्चा होने का अभ्यास करना है, सच बोलने का अभ्यास करना है, तो फिर इतना करो कि भाषा समिति का पालन करना, यानी हित मित और प्रिय वचन बोलना। झूठ नहीं बोलना यह तो ठीक है, लेकिन सच बोलना यह भी संकल्प करना पड़ेगा। या तो कुछ भी मत बोलो, अगर बोलना तो झूठ मत बोलना, अगर बोलना तो सच बोलना। और सच भी कैसे बोलना, हित मित और प्रिय बोलना। इतनी सारी चीजें, इन सब का जब मैं विचार करता हूं तो लगता है कि चुप रह जाना ज्यादा अच्छा है, बहुत आसान तरीका है। लेकिन चुप रह जाने में भी भीतर शांति हो तो ही चुप रहना ठीक है। ऐसी चुप्पी कोई काम की नहीं जो मन को बहुत अशांत किए हुए। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि पशु के समान चुप रह जाने का मतलब ही सत्य धर्म को पा लेना है। ऐसा मत समझ के बैठ जाना कि जो जितने चुप रहते हैं वे सत्य धर्म का पालन करते हैं या कि महाव्रती हो गए या कि भाषा समिति आ गई उनके अंदर, ये मत सोच लेना। नहीं तो फिर तो बहुत आसान है ये तरीका, फिर तो मुंह में जो है कपड़े बांध करके और आराम से तो सब सत्य धर्म को उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। चुप रह जाने का मतलब अकेला सत्य नहीं है, भीतर से बोलने की इच्छा ही नहीं है। सत्य और असत्य का क्योंकि निर्णय नहीं कर पा रहे इसलिए शांत है, कुछ कोई कमेंट नहीं, नो रिएक्शन एट ऑल। ऐसी प्रक्रिया तो बहुत कठिन है, ये तो वचन गुप्ती कहलाए। लेकिन उस वचन गुप्ती को प्राप्त करने के लिए मैं कम से कम संकल्प करूं कि झूठ तो नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो सच बोलूंगा, और सच बोलूंगा तब फिर दूसरे को संताप पहुंचाने वाले वचन नहीं बोलूंगा, हितकारी वचन ही बोलूंगा और टू द पॉइंट मित बोलूंगा। ये सब चीजें जीवन में अपने आसानी से हम अभ्यास करें तो आ सकते हैं। सच्चा होने के लिए आचार्य भगवंतों ने 8 बातें कही हैं। अगर हम अपने जीवन में सच्चे होना चाहते हैं, हम अपना जीवन झूठ में नहीं जीना चाहते, सच्चे होना चाहते, तो पहली बात कि कभी सच पर संदेह मत करना। हम लोग झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और सच्ची बात पर विश्वास नहीं बल्कि उल्टा अविश्वास करते हैं। देख लो संसार में, अगर कोई कह देवे कि भौतिक सुखों में ही सच्चा सुख है, हम जल्दी तैयार, हम तो हमें पहले मालूम। और कोई कहवे कि बीत रात्ता में सुख है, तपस्या करने में सुख है, अरे ये तो ही तो सामने दुख दिखा रहा है, तुम कह रहे सुख है, कुछ विश्वास नहीं जमते। बड़ी जल्दी जो जो कल्याण की बातें हैं उनमें संदेह जल्दी होता है, और जिनसे अकल्याण होता दिखाई पड़ रहा है उनमें फिर भी विश्वास जमा हुआ है।
इसलिए आचार्य भगवंतों को पहली बात लिखना पड़ी कि सबसे पहले सच्चाई के बारे में संदेह मत करना। और सच्चाई कितनी है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही सच्चाई है। रत्नत्र ही सच्चाई है, सच्चाई में कभी संदेह मत करना। और दूसरी बात, सच से अधिक किसी और चीज की आकांक्षा मत करना। हम रत्नत्रय से अधिक आकांक्षा रखते हैं और चीजों की। देख लो आप, भले ही सकल गिये जाए तदपि की विनती पढ़ते समय ये कहते हैं कि रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, रत्नत्रय निधि चाहिए, लेकिन भीतर भीतर तो भाव यही रहता है कि कहने की बातें हैं, बाकी चाहिए तो मुझे संसार के ही सुख हैं भगवान। देख लो आप, अपने भीतर झांक के देखना पड़ेगा, दूसरे के बारे में नहीं, अपना स्वयं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहता हूं रत्नत्रय निधि चाहिए और मांगता हूं अपना वही संसार, क्रियाएं संसार बढ़ाने की ही करता हूं, अगर तो समझिएगा कि अभी सच्चे होने का अभ्यास शुरू नहीं हुआ। सच्चे होने का अभ्यास करने वाला हमेशा सच्चाई का सम्मान करेगा। इतना ही नहीं, सच्चाई के अलावा किसी और चीज की आकांक्षा नहीं करेगा, सच्चाई से कभी घृणा नहीं करेगा, और अगर कोई लालच भी देगा तो सच्चाई को छोड़ेगा। और अगर कोई सच्चाई को पालन कर रहा है तो उसके दोष नहीं देखेगा, अगर कोई सच्चाई से विचलित होने लगे तो उसे संभाल लेगा। और जो सच्चाई है और जो सच्चाई को पालन करने वाले हैं उनके प्रति हृदय में अत्यंत वात्सल्य रखेगा, और जहां बैठेगा वहां सच्चाई के गुणगान करेगा, सच्चाई की ही महिमा कहेगा। भले ही मेरे जीवन में वो सच्चाई नहीं आ पाई, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई की ही महिमा गाऊं, सच्चे व्यक्ति की ही महिमा गाऊं। अभी तो मैं बेईमान आदमी की ज्यादा महिमा गाता हूं, सच्चाई वाले को जानता हूं कि यह सच्चा है, लेकिन भीतर भीतर बस बाहर प्रकट में सच्चे आदमी की पीठ नहीं थपथपाता मैं कभी। थपथपाना तो पीठ मुझे बेईमान की ही पड़ती, क्योंकि काम तो उसी से चलता मैं। अब बताइए ऐसी स्थिति में मैं कैसे सच हो सकता हूं? सच होने के लिए ये आठ बातें हमारे जीवन में आनी चाहिए। हम सच्चाई का सम्मान करना भूल गए हैं, इसलिए हम स्वयं भी सच्चे होने से डरने लगे। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि सच्चाई का सम्मान तो होता नहीं है, होता तो झूठ का ही सम्मान है। ऐसी स्थिति में कौन होगा जो सच होना चाहेगा? सच होना तो पसंद सबको है, लेकिन सच होने में कुछ लाभ नहीं दिखाई पड़ता, उल्टे संसार में सच्चे आदमी की और फजीहत होती दिखाई पड़ती। तब ऐसी स्थिति में एक भय मन के भीतर लगने लगता कि भैया अपने को नहीं होना सच, अपने को जैसा संसार है वैसे ही ठीक है, वैसे ही बेईमान और वैसे ही झूठा जीवन जीता रहूं, कम से कम सुख से तो जीऊंगा, नहीं तो उसमें देख लिया हमने ईमानदारी से सच्चाई से सरलता से जीवन जीने वालों की क्या स्थिति बन रही है। ऐसा देख करके और सच्चाई से विमुख होने लगे अगर, तो याद कर लेना चाहिए इन आठ बातों को कि नहीं, जब भी करूंगा सच्चाई का सम्मान करूंगा, सच्चाई के अलावा मैं किसी चीज को नहीं चाहूंगा, कभी सच्चाई से घृणा नहीं कहूंगा। सच्चा व्यक्ति अगर मुश्किल में भी है तब भी उससे घृणा नहीं करूंगा, क्योंकि वो सच्चाई की वजह से मुश्किल में नहीं है, वो अपने किसी पूर्व जीवन के झूठे आचरण की वजह से आज मुश्किल में है। ऐसा सब विचार मन में आने लगे तो सच्चे होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एक उदाहरण भी मैं हमेशा सुनाया करता हूं कि कैसे हम लोगों को सच्चे होने की प्रेरणा ना देकर के झूठा आचरण करने की प्रेरणा दे देते हैं, क्योंकि झूठे आचरण में प्रशंसा और प्रतिष्ठा मिलती मालूम पड़ती है ना। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार में। हरिवंश राय बच्चन को ये चार लाइनें लिखना पड़ी, और उसके पीछे उनके जीवन की घटना भी है कि मेरे भीतर जितना सच्चाई थी वो मैंने कहना शुरू की तो लोगों ने कहा अरे ये तो आदमी बेईमान है। और जब मैं बेईमान होकर के बाहर ये प्रकट करता रहा कि मैं ईमानदार हूं तो लोग मुझे ईमानदार मानते हैं, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, और मैं छल रहित व्यवहार करने लगूं, सच्चा व्यवहार करने लगूं तो फिर मैं साधु की तरह नहीं पूजा जाता। फिर ये एक तरह का बहुत बड़ा व्यंग है, चोट है हमारे अपने ऊपर कि हमें बाहर में अगर पद प्रतिष्ठा और लाभ मालूम पड़ता है तो हम झूठा आचरण करने भी तैयार हो जाते हैं। सच होने वाला हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा। एक उदाहरण जो मैं आपसे कह रहा था विदिशा का है, छोटा सा बच्चा था, 5 साल का बच्चा था, पहली कक्षा में पढ़ना शुरू किया था उसने, और उनके पिता एक दिन बहुत दुखी होकर के मेरे से बोले कि मैंने इसे बचपन से सच बोलना सिखाया, मेरे से ये हमेशा आज तक 5, 5.5 बरस का हो गया सच ही बोलता था, लेकिन आज इसने झूठ बोला, इस बात का मुझे दुख है।